निराकार उसके वहां यदि हमारी समाधि हुई तो उसके लिए दो हो गए स्विकल्प और निर्विकल्प। यदि हमारे चित्त के वहां विकल्प रहा भगवान का जो निराकार होकर निराकार रूप और निराकार स्वरूप का जो नाम और उसका ज्ञान तो वो स्विकल्प समाधि है और वो दूर नहीं रहने से वो निर्विकल्प हो जाती है केवल एक भगवान का स्वरूप ही रह जाए। अब ये ख्याल करना चाहिए उसी का नाम सदिचार और निर्विचार है। सदिचार जो है सदिकल्प को कहते हैं और निर्विचार जो है सो निर्विकल्प को कहते हैं। ऐसे ही एक प्रकार से आनंद समाधि होती है। आनंद समाधि की जैसे एक आनंद का ध्यान किया ये जो समाधि मैंने बहुत लगाई दो पदार्थों के वहां साकार निराकार का दो भेद करके और भगवान के ऊपर घटा करके भगवान के साकार रूप पर भगवान के निराकार के रूप के ऊपर घटाकर आपको बतलाई। इसी प्रकार से जितने आकार वाले जो पदार्थ है सूर्य चंद्रमा आदि सब के ऊपर यही बात समझ देनी चाहिए और जितने जो निराकार पदार्थ है जैसे सूर्य की आपने आकाश है वायु है इनका आकार भी है तो इनके महत्वपूर्ण बात समझ लीजिए। इसी प्रकार के जो हम आनंद है वह केवल जड़ नहीं है, जड़ और चेतन की एकता होती है वही सुख दुख होते हैं। केवल जड़ के महसूस नहीं होता और केवल चेतन के मानव सुख नहीं होता माने जो हर स्रोत सुख दुख की जो उपलब्धि होती है वो संयोग से होती है जड़ चेतन के। क्योंकि जो हेम दुख मनागतम आने वाले दुख का नाम हेम है संयोग कहते हैं कि हेम दुख मनागतम संयोग हेतु ये सूत्र है कि हेम त्यागने की योग उसका हेतु है संयोग संयोग जड़ चेतन की एकता। तो जड़ चेतन की एकता के माही दुख सुख होते हैं तो इसी को अस्मिता कहते हैं और समझो कि इन दोनों की एकता जो है उसी का नाम अस्मिता है। और यहाँ अस्मिता की समाधि को अलग बता करके वहाँ इंद्रियों के वहां जो सुख बुद्धि है उनके वहां समाधि बताई है। किंतु ऐसी बात नहीं अपने इसमें यूं समझना चाहिए जो हम एक प्रकार से कल्पना करते हैं उस परमात्मा को लेकर के हमको सब बात परमात्मा ने बताई है। तो परमात्मा के विषय में कि जैसे हम कहते हैं कि पूर्ण आनंद अपार आनंद शांत आनंद घन आनंद अचल आनंद धूल आनंद नित्य आनंद बोध स्वरूप आनंद ज्ञान स्वरूप आनंद इस प्रकार से हम आनंद के शब्दों को उच्चारण करते करते आनंद में हमारी समाधि हो गई। उस आनंद के नाम जो समाधि है वो भी सदिकल्प और निर्विकल्प दो भेद वायु होती है। सदिकल्प जो है कि आनंद का जो स्वरूप है आनंद में जो परमात्मा का स्वरूप है और परमात्मा का नाम और परमात्मा का ज्ञान है ये सभी ग्रह है। और इन्हें तीन विकल्पों का नहीं होना केवल एक परमात्मा का आनंद स्वरूप ही रह जाना ये निर्विकल्प है आनंद के विषय। इसके बाद अस्मिता अस्मिता का मतलब है कि देखो विकल के मन जो है भाव है उसमें परमात्मा के विषय में हम घटाना तो यू बता सकते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार से कि योग शास्त्र का जो सिद्धांत है वे इस सिद्धांत को भी मानते किंतु वेदांत के सिद्धांत के अनुसार जो एक अहम ब्रह्मास्त्र जैसे आया है और उस महावाक्य के विषय में ले जाकर इस प्रकरण को हम घटाने अस्मिता के बीच के मान तो प्रकार से कि अहम जो मैं असल ब्रह्म हूँ तो सब बात परमात्मा पर बता करके मैं कह रहा हूँ। तो इसलिए जिसमें मैं ब्रह्म हूँ मैं ब्रह्म हूँ ऐसे करते करते समाधि हो जाए तो ये असली काम समाधि होगी वास्तव में ब्रह्म नहीं ब्रह्म के भीतर के मान जो है उनकी भावना से ही अपना अपनी जो मान्यता है उसके माया समाधि हुई। उसके लिए दो भेद है एक तो समझो कि नाम रूप और ज्ञान इनका जो विकल्प है तो वो एक प्रकार से विकल्प है, पर विकल्प समाज है और विकल्प का अभाव होकर के और केवल मात्र समझो कि अपने स्वरूप ही रह गया, तो वो उसमें जो समाज है वो निर्विकल्प समाज है। तो ये एक एक के दो दो भेद आपको बताया, इसे चार के आठ भेद होंगे, किंतु ये सही शरीर है, सभी संप्रज्ञातियों का ये विस्तार है। और वो जो असंप्रज्ञात योग है वो आपने इसका फल है, वो निर्विक समाधि है, उसमें विकल्प का तो अभाव है ही, संकल्प तो है ही, वो निर्विकल्प तो है ही, पर निर्विकल्प के जिसके वहां जो अपना माना हुआ जो बीज है वो वहां नहीं रहता है, वो सबसे परे की समाधि है, उसी को सब साधनों का और सब समाधियों का फल बताया गया है। तो वो जो समाधि है उसको गुरु की प्राप्ति को, परमात्मा की प्राप्ति को, अपने शुद्ध आत्मा की प्राप्ति को, तो योग के मार्ग से ही मनुष्य इस प्रकार से कि उस परमात्मा को पा लेता है। तो ये इससे ज्ञान होता है, ज्ञान होने से ज्ञान का नाश होकर के उस परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। आठ अंग योग के हैं, उस आठ अंग जो योग के अंतिम अंग समाधि है, और समाधि का जो फल है वो परमात्मा की प्राप्ति है। तो इस प्रकार से थी करने से थी योग शास्त्र के मां बतला है, युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है, और ये एक प्रकार से आप साधन करके देखो तो अंगों का विषय, ये अंगों का विषय है। इस योग शास्त्र को पढ़ने से इसका ज्ञान नहीं होता, साधन करने से ही ज्ञान होता है। बहुत लोग जो है सो पूछे कि उनके ज्ञान से अपने को ज्ञानी मान लेते हैं, नहीं उसका ज्ञान तो अभ्यास करने से हो जाता है, असली जो ज्ञान है वो अंगों से होता है। तो इस प्रकार से कि योग के साधन के द्वारा समझो कि जो उन्होंने प्रसन्न किया था वो हल हो जाता है, वो सबका विनाश हो जाता है। किसका कि अविद्या बताना पांच बात, अविद्या स्मिता राग द्वेष अभिनिवेश पंच कलेश, ये पांच कलेश के देने वाले होने से इनका खुद का नाम कलेश है। तो इसके मां सम के मां अविद्या क्षेत्र गुप्ते शाम, ये चार जो बाद वाले उत्तर वाले उनकी अविद्या ये सो क्षेत्र है, मूल है, जड़ है। अविद्या के नाश सबका नाश हो जाता है, उसी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान का नाश होता है ज्ञान से, और वो ज्ञान जो असर होता है समाधि से। इस वास्ते समाधि लगाने से ज्ञान उत्पन्न होकर ज्ञान का नाश होकर के विद्या का नाश होकर के और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। तो अविद्या ही उसमें जड़ है, किसमें अहंता ममता के मां, जो हंता जो है अहंकार जो है अभिमान जो है मैं मेरा कौन जो है इसकी जड़ है, सो ज्ञान में अविद्या है। इसी प्रकार से राग द्वेष की जड़ भी अविद्या है, इसी प्रकार से कि मन को जो भय है इसकी भी जड़ है सो अविद्या है। तो अविद्या के नाश होने से इन सब पंचों का नाश हो जाता है। पंचमजला जो एक मकान है और नीचे की मदर ढा दी जाती है तो ऊपर की मदर पर किस आधार पर रहती है, वो मकान सबका सब नष्ट हो जाता है, सबका सब नष्ट हो जाता है। तो ये आपको बताया कि योग के साधन के द्वारा, योग के साधन के द्वारा हंता ममता और राग द्वेष का एकदम विनाश। इसी प्रकार से थी ज्ञान के द्वारा बताया गया है, भक्ति के द्वारा बताया गया है, कर्मयोग के द्वारा बताया गया है, उनमें कोई भी एक आप साधन कर लो तो ये सब बातों का विनाश हो जाता है। अब ज्ञान के मार्ग से थोड़ी सी बात बतलाता हूं। ज्ञान के मार्ग से ये कि अपने ज्ञान होने से माने ये देह जो है कि शरीर के भीतर के बीच के वहां जो ये भाव है कि शरीर मैं हूं या शरीर मेरा है, ये जो इसका है हूं, और इसका जो नाम है उस नाम के भीतर के वहां ये भाव है कि नाम है सो मैं हूं या नाम है सो मेरा है। तो इस नाम के मां मैं और मेरा होने से ही आगे जाकर उसमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, आगे जाकर उसमें सुख दुख उत्पन्न होते हैं। ये पहला ये भाव होने से जैसे मेरा नाम जेजियाल है, तो ये जेजियाल जो मेरा जो नाम है ये वास्तविक के मां ये मेरा नाम नहीं है, ये समझना ज्ञान है। और मैं जेजियाल हूं या मेरा जेजियाल नाम है ये समझना ही अज्ञान है। माने जो बात झूठ है एक प्रकार से थी वो अज्ञान है, और जो बात वास्तव के बाद सच्ची हो है वो ज्ञान है। मैं क्या चीज हूँ इस बात का जो यथार्थ जो अनुभव है उसका नाम ज्ञान है,
और इसको जो विपरीत धारणा है उसका नाम अज्ञान। तो ये विवेक के द्वारा ये बात समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जब मैं पैदा हुआ थोड़ी बार के लिए मान लो कि जो मेरे शरीर का ढांचा देता है वो ही समझ लो कि कल्पना कर लो कि एक मान लो कि मैं मान लू वो मैं है नहीं, वो तो बाद में उसका खंडन किया जा सकता है। और पहले तो यही समझ लो कि ये जो हमारा शरीर है ये जब पैदा हुआ था तो कोई भी किसी ने भी ये बात नहीं कही कि हमारे यहाँ देवदियाल जलना है। लोगों ने कहा सबने घरवालों ने किसी ने तो कहा गिरा गया है और किसी ने कहा कि लड़का पैदा, किंतु देवदियाल का तो नाम निशानी नहीं था और मेरा शरीर भी स्रोत में कायम था, इसमें जो आत्मा बोल करके चीज मैं भी कायम था, दोनों के रहते हुए भी देवदियाल कायम नहीं था। तो बाद के मानस का नाम देवदियाल कराया गया। संभव है कि बहुत विकल्प होंगे, किसी ने कहा होगा जबूलाल कराओ, किसी ने कहा होगा पर्वद्वाल कराओ, किसी ने किस कहा होगा, मुझको तो मालूम नहीं क्या विचार हुआ, किंतु आखिर में ये प्रणाम देकर के मालूम होता है कि जरूर विचार हुआ होगा और देवदियाल नाम इसका कायम किया गया। नहीं तो एक प्रकार से कि मुझको बतलाते रहते देवदियाल देवदियाल, मैं समझता ही नहीं ये क्या कहते। बहुत दिनों के बाद के बीच के मना जब बार बार इस शब्द का प्रयोग करने लगे साइकिल दबे चालू दबे, तब मैं मेरे मन में ये ज्ञान लिया कि मैं देवदियाल हूँ, मैं अपने को देवदियाल नहीं लिया। अब देवदियाल की कोई निंदा करे तो मुझको दुख हो, स्तुति करे तो सुख हो। अब ये मानने लगा कि देवदियाल मैं हूँ, मेरा नाम देवदियाल है, क्योंकि ये बिल्कुल झूठ बात। तो इसका नाम अज्ञान। ये एक प्रकार से मानना कि मैं देवदियाल हूँ, मेरा नाम देवदियाल है, ये थोड़ा ज्ञान। अब ये समझ लेना कि भाई मैं देवदियाल नहीं हूँ, ये है ज्ञान, यथार्थ बात को समझना ज्ञान। अब ये ख्याल करो कि जब इसकी परीक्षा यह है कि फिर कोई मेरी कोई निंदा करे या स्तुति करे, तो निंदा स्तुति को सुनकर करके निंदा स्तुति को सुनकर के मेरे चित्त में कोई विकार नहीं हुए तब तो ज्ञान है, यथार्थ बात है। और निंदा स्तुति को सुनकर करके एक प्रकार से मैं दुखी सुखी हूँ, मेरे में राग द्वेष हुए, निंदा तो मैंने अनुकूल प्रतिकूल मालूम गए, स्तुति अनुकूल मालूम गए, तो अनुकूलता प्रतिकूलता राग द्वेष हरक शोक ये सब पैदा हो गए। क्यों पैदा हो गए कि मैं ये बात मान ली, झूठी बात मान ली कि मैं देवदियाल हूँ या देवदियाल मेरा नाम है, और विचार करने से निश्चय हो गया कि भाई देवदियाल तू मेरा नाम भी, नाम तो एक शब्द है और शब्द है वो आकाश का गुण है, तो मैं देवदियाल कैसे हुआ। आकाश में यदि काल या बात मान ले कि शब्द मेरे रूप है तो यह भी कुछ बात हो काल तक दृष्टि है, मैं इसके मां रहने वाला जो मैं रहने वाला जो मेरा आत्मा मेरा स्वरूप है उसको मैं ये मान लूं कि देवदियाल मैं हूं या देवदियाल मेरा नाम है, तो ये तो विचार करने से ये चीज फैल ही नहीं सकती है, तो इसका नाम अज्ञान है। तो उस प्रकार के विचार के द्वारा ज्ञान के द्वारा भी मनुष्य समझ सकता है कि ये नाम के साथ केवल मैं मेरे का जो समझ जुड़ गया है ये बिल्कुल गलत। ऐसे ही जो मेरा शरीर है इस शरीर के मां भी ऐसे ही विचार है कि शरीर जो है मैं हूँ ऐसी बात नहीं, क्योंकि शरीर तो घटता बढ़ता है, पहले तो छोटा सा था फिर इतना बड़ा हो गया, और हाथ हमारा काट दिया जाता है तो कटे हुए हाथ को मैं अपने से पृथक देखता हूँ, पहले तो ये समझता था कि ये मैं हूँ, अगर इसको काट डाला तो मैं इसको अपने से पृथक देखता हूँ, जब पृथक देखा तो चाहे इसको कोई काटे चाहे कोई बढ़ाओ मैंने बिल्कुल दुख नहीं होता, चिंता नहीं होती, कुछ नहीं होता, क्योंकि मैं समझ लिया कि हाथ मैं नहीं, अब उसे मैं अलग। इसी प्रकार से कोई डॉक्टर ने समझो कि मेरा पैर काट लिया इसलिए कि विष जुड़ गया था पैर में, उसने कहा कि नहीं तो तू मर जाओगे, तो उन्होंने कहा था पैर काट दो, तो वही बात कटे हुए पैर के मां है, मैं जिंदा हूँ, जिंदा जागता हुआ समझता हुआ और पद को अपने से पृथक देखता हूँ, और उसे को अब कोई काटे तो कोई मेरे दुख नहीं होता, क्यों वो मेरे से अलग हो गया, अब उसे मेरा कुछ समझ नहीं दिया, और पहला वो पद भी मैं बना हुआ था। तो इसी प्रकार से हाथ पैर के नमूने के अनुसार सारा शरीर तो उसी प्रकार का है, तो इस न्याय से जैसे मैं हाथ नहीं हूँ पैर नहीं हूँ इस प्रकार से शरीर भी ऐसे में और मेरा भी नहीं है, क्योंकि जब मैं यहाँ से विदा होता हूँ तो शरीर हमारे को साथ में नहीं जाता। और सूक्ष्मता से विचार कर करके देखो ये सारा शरीर जो एक प्रकार से जिसमें मैं भाव हो गया और मैं भाव होने से ही एक प्रकार से ही ये सब हमारे को सुख दुखी शरीर के समय से होने लगे। अरे शरीर से जो अलग हो जाता है अरे उस कठिन चीज से मैं भाव चला जाता है तो उससे सुख दुख हमारे को नहीं रहता। अब हम यहाँ से विचार किया कि यहाँ से गर्भ स्थिति चलू और गर्भ स्थिति का विचार किया तो शेर भर को साथ में खाने के लिए केला ले लिया मैंने केले और शेर भर गंगा जल ले लिया। अब पूछ करके के उसको सो खा लिया समझो कि केले का जो झुंड का झुंड पकड़ के ले गया शेर भर और समझो कि जो को भी ले गया डेरी में डाल करके तो उन्हें जाकर के हाँ, जाने के बाद तो दो शेर गोजा में ले गया तो समझो कि मुझको गोजा मालूम हुआ और वो मेरे भीतर में दो शेर गो चलाया आज ही वक्त के बीच के ना वो मेरे को गोजा मालूम नहीं हुआ। अब वो मैं बन गया पहला तो मेरे से वो चीज पसंद थी तब उसको वो ये भाग थी वही चीज अब वो चीज जब मैं बन गया अब उसका भाग नहीं ये डेढ़ मन का गोजा करीब में लिया खोले हूँ शरीर का उसका जब उनको बाहर खोले बाहर लगे तो मैं समझो कि अपने फरार भी नहीं जा सकूं अरे शरीर से मैं पांच नहीं जा सकूं तो उसका भार कहां तो भार क्यों नहीं है कि मैं नहीं बना बैठा हूं तो भार कैसे और इसी में से कोई हाथ पैर कर जाए कोई चीज कर जाए अलग हो जाए और उसको लेकर के चलो तो भार मालूम गए कि वो मैं से अलग थी। तो इसी प्रकार से किया मैं बनी है या बात जब समझ में आ जाए तो फिर देख मां मैं अपने अभिमान कैसे रह समझा कि भाई जैसे मैं हाथ नहीं पैर नहीं ऐसे शरीर भी ऐसे मैं नहीं और इंद्रियां भी मैं नहीं क्योंकि कोई इंद्रिय नष्ट हो जाती है तो मैं कोई मर नहीं जाता आंख के फूटने से नहीं मर जाता मैंने सुनने की शक्ति नष्ट होने से मैं नहीं मर जाता तो इंद्रियां मैं नहीं और मन भी मैं नहीं क्योंकि मन कहीं चला गया आपने तो फिर उसके उसका मुझको ज्ञान है कि मेरा मन कलकत्ता गया बंबई गया और मैं अपने मन को अपने से प्रत्येक देखता हूं तो मन मैं कहा और बुद्धि भी मैं नहीं मैं कहता हूँ कि आज मेरी बुद्धि बहुत ठीक है आज मेरी बुद्धि ठीक नहीं है तो बुद्धि तो कभी ठीक होती है कभी बे ठीक होती है अरे इसको कौन जानता हूँ मैं जानता हूँ तो जानने वाला मन से भी अलग है बुद्धि से भी अलग है इंद्रिया से भी अलग है शरीर से भी अलग है तो वो जानने वाला जो है वो चेतन है और वो आत्मा है और जानने में आगे ये सब पदार्थ जड़ है और ये सब कोई भी आत्मा नहीं है। इस प्रकार से विचार के द्वारा विवेक के द्वारा जो मनुष्य एकांत में बैठ करके निर्णय करता है तो ये ज्ञान का मार्ग विचार का मार्ग है। इस प्रकार के विचार से कि एकदम ये बात उसको साफ मालूम हो जाती है कि शरीर के साथ में मेरा कोई भी सत्संग नहीं है। तो ये संजय की बात आगे बुद्ध में कही जाया करती थी अब थोड़ा विस्तार से गया और सार बात कही जाया करती थी जैसे आज प्रातःकाल बद्रीदास को बताई थी तो एकदम शरीर से अपना कोई भी संबंध नहीं है ये शरीर तो अपने आत्मा से भिन्न पदार्थ है शरीर तो आत्मा से अलग चीज है तो एक प्रकार से जानने वाला आत्मा है और वो अनंत है वो व्यापक है और ये व्याप है और ये सब चीज अपने नाशवान है और वो रिच है और वो चेतन है और ये सब अपने मानी हुई है और वो माना हुआ नहीं मानने वाला माना हुआ नहीं है और मानने में आगे वो चीज अपनी मानी हुई है इसलिए वो आत्मा चेतन है भ्रष्टा है साक्षी है केवल है शरीर के ना संस्कार नहीं होता। उस वक्त हम चार आदमी बैठे थे उनको चार आदमियों को ख्याल करके देखो कि एक प्रकार से इससे किसी से भी आत्मा का संबंध नहीं है और जैसे चारों आदमी है ऐसे ही आदमी जो वो कमरा है तो इस कमरे में और चारों आदमियों में कोई भेद नहीं ये इसके साथ में आत्मा का कोई संबंध नहीं है। आत्मा इसके वहां कौन सी चीज है कि चेतन चेतन किसको कहते हैं कि जानने वाले को ज्ञाता को और जड़ किसको कहते हैं कि जो जानने में आ गया उसको तो ये सब जितने जानने में आने वाले पदार्थ है तो वे एक प्रकार से जड़ है और चेतन के मानी हुए हैं और चेतन का कभी अभाव हो नहीं सकता कोई भी अपने आप का अभाव नहीं कर सकता और अपने से दिन का अभाव कर सकता है तो अपने से जो दिन है ये सब जड़ है ये चेतन का ही माना हुआ है और चेतन ही आत्मा है वही अपना स्वरूप है। अब देखो विचार करके इस शरीर के यदि कोई आपने चमकाया जावे जिसको हम कहते चूतिया भरा जावे तो क्या देखो मरकर के आपने दुख होता है क्या जब इसके मन होता है तो इसके मन अभी उसके मन आत्मभिमान है अभी तो हो ही नहीं सकता काट डालता है शरीर को तो इस प्रकार से थी देख रहे हैं कि ठीक है तो कोई भी समझ नहीं है शरीर आत्मा का ही से।